नमस्कार भारत, 27 जनवरी दिन शनिवार, मैं हूं आदर्श राठौर। उत्तर प्रदेश के कासगंज में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद लगा कर्फ्यू, जानेंगे आज कैसे हैं हालात। पूर्वोत्तर राज्य असम के डीमा हासाओ जिले में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में दो लोगों की मौत।
माइबा में कर्फ्यू है, वहाँ कुछ लोगों ने वो रेल रोका और डीसीएसपी को अटैक किया, तो वहाँ फायरिंग वायरिंग हुई, वो क्राउड ज्यादा वायलेंट हो गई थी, इसलिए कर्फ्यू लगाना पड़ा।
हरियाणा के पंचकुला में कथित तौर पर पुलिस ने की मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई, कहा पाकिस्तानी।
मेरे कहना तू मुसलमान बहुत खराब आदमी है, तू पाकिस्तानी है या कट्टर मुसलमान।
विवेचना में बात होगी भारतीयों के मन में गहरी छाप छोड़ने वाले ऐतिहासिक भाषणों की, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। उत्तर प्रदेश के कासगंज में सांप्रदायिक हिंसा में एक युवक की मौत के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ युवा शहर में बिना प्रशासनिक अनुमति लिए तिरंगा रैली निकाल रहे थे, जिसके मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचने पर तनाव हो गया। पुलिस के मुताबिक हिंसा में चंदन गुप्ता नाम के युवक की गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि नौशाद नाम के युवक को टांग में गोली लगने के बाद अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका में जिम्नास्टिक के समूचे बोर्ड ने जिम्नास्ट टीम के पूर्व डॉक्टर लैरी नासर का सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद पद छोड़ने का फैसला लिया है। अमेरिका की ओलंपिक समिति ने बोर्ड के निदेशक मंडल के सभी लोगों के पद न छोड़ने की स्थिति में उसका दर्जा छीन लेने की धमकी दी थी। बोर्ड के 5 सदस्यों ने पहले ही पद छोड़ दिया था। लैरी नासर को बुधवार को ही 150 से ज्यादा युवा लड़कियों का यौन शोषण करने के आरोपों में 175 साल की सजा सुनाई गई थी। महिला एथलीटों का यौन शोषण करीब 2 दशक तक चला था। अमरीकी जिम्नास्ट एसोसिएशन ने स्वीकार किया है कि 2 साल पहले यौन उत्पीड़न का पता चलने के बाद बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं की गई थी। मिशिगन प्रांत इस स्कैंडल से खासा प्रभावित रहा है। मिशिगन स्टेट की सीनेटर मार्गरेट ओब्रायन ने इस खबर का स्वागत करते हुए कहा, जो कोई कानून तोड़ता है उसके लिए हमारे पास दंड है। मिशिगन में कई पेशे ऐसे हैं, जैसे कि थेरेपिस्ट या मेडिकल का पेशा, जिन्हें ऐसी घटनाओं को प्रशासन को बताना होता है। उन्हें ये बताया गया था और उन्होंने कुछ नहीं किया। ये स्पष्ट है कि दंड बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हम और जिम्मेदारी की मांग करेंगे और हम इस संस्कृति को बदलने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। सऊदी अरब में भ्रष्टाचार के आरोपों में हिरासत में लिए गए देश के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से कुछ को वित्तीय समझौते के बाद रिहा कर दिया गया है। बीते साल नवंबर में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई अभूतपूर्व मुहिम के तहत इन लोगों को हिरासत में लिया गया था। रिहा हुए लोगों में सऊदी अरब के सबसे बड़े टीवी नेटवर्कों में से एक के मालिक वलीद अल इब्राहिम और शाह अब्दुल्लाह के जमाने में सबसे ताकतवर लोगों में से एक रहे खालिद अल तवाजीरी भी शामिल हैं। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है कि रिहा हुए लोगों ने कितनी रकम अपनी आज़ादी के बदले चुकाई है। इन रईसों को राजधानी रियाद के रिट्ज कार्ल्टन होटल में नज़रबंद रखा गया था। ये होटल 14 फरवरी से दोबारा ग्राहकों के लिए खुल जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति ने 5 साल में की गई पहली प्रेस वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और कैथोलिक चर्च पर तीखा हमला किया है। जोसेफ कबीला का कहना है कि उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कैथोलिक चर्च से जुड़े लोगों को न्याय का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का प्रबंधन करने के लिए नहीं है और DRC अब किसी देश का उपनिवेश नहीं है। राष्ट्रपति जोसेफ कबीला ने कहा, संयुक्त राष्ट्र का ये मिशन हमारे देश में बीते 20 सालों से तैनात है और हम अगले कुछ दिनों में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी है, उनकी इच्छा कांगो को संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में रखने की है। कनाडा की विमान निर्माता कंपनी बॉम्बार्डियर ने अमेरिका में एक व्यापारिक अदालती मुकदमा जीत लिया है, जिसके बाद कंपनी के सी क्लास विमानों के अमेरिका में आयात पर 300% शुल्क लगाने का फैसला पलट दिया गया है। सीरिया के मुख्य विपक्षी समूह उच्च स्तरीय वार्ता समिति ने अगले सप्ताह रूस की मध्यस्थता में सोची में होने वाली शांति वार्ता में शामिल न होने का ऐलान किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। उत्तर प्रदेश के कासगंज में कल गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के दौरान हुई झड़प ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। अब तक पुलिस के हवाले से आई खबर के मुताबिक एक युवक की भी मौत हो गई है और कुछ लोग घायल हो गए हैं। कासगंज में कल ही कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। आज अभी वहां किस तरह के हालात हैं, जानने के लिए बात करते हैं समीरात्मज मिश्र से, जो कि सीधे हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। जी समीर जी, बताएं कि अभी किस तरह के हालात हैं।
जी आदर्श, जैसा आपने बताया कि वहां पे कर्फ्यू कल ही लगा दिया गया था, जो झड़पें हुई थी हिंसक झड़पें, और कर्फ्यू अभी भी वहां पे लगा हुआ है। कर्फ्यू के बावजूद देर शाम वहां पे एक दो जगह कुछ तोड़फोड़ की और आगजनी की कोशिश की घटनाओं की खबर है। पूरे शहर में रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। शहर के अलावा भी जो कुछ रूरल इलाके हैं और जिनको माना जाता है कि संवेदनशील इलाके हैं, वहां भी कर्फ्यू जैसे हालात हैं और पुलिस बड़ी संख्या में वहां भी तैनात की गई है। और जैसा आपको बता दें कि कल ये तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद के कुछ युवक थे जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, और ये कोतवाली के पास से जब गुजर रहे थे तो उसी समय वहां पे कुछ लोगों से उनकी झड़पें हुई और झड़पों के बाद ही ये पथराव शुरू हो गए। पथराव के बाद आगजनी हुई, कई लोगों को चोटें आई। लगभग बताया जा रहा है कि कम से कम 8-10 लोग ऐसे हैं जो पत्थरबाजी में घायल हुए। बाद में दोनों पक्षों की ओर से गोलीबारी हुई। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल है जिसको गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर किया गया है, वहां पे अभी उसका इलाज चल रहा है। और पुलिस का कहना है कि कम से कम 25-30 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अभी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, लोग चिन्हित किए जा रहे हैं कि उनमें जो भी शामिल थे, क्योंकि शामिल होने में बहुत सारे लोग थे और हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग थे। तो अभी पुलिस ने कुछ लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया है। पुलिस का ये कहना है कि लगातार लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जहां तक अभी ये बात है कि स्थिति वहां पे, तो हमने जो ताजा वहां जानकारी ली है, स्थिति काफी तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। हालांकि इतनी बड़ी पुलिस बल की तैनाती के बाद वहां पे उस तरह की घटनाएं तो नहीं हुई है, लेकिन कोशिश, जैसा हमने बताया कि दो तीन जगहों पे हिंसक झड़पों की फिर से कोशिश हुई है। और अभी जिस युवक की मौत हुई है, सुबह 8 बजे शायद उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाएगा, क्योंकि देर शाम उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और आई थी
जी।
तो देखिए अभी हालात पे नजर रखे हुए हैं और आगे क्या होता है, लेकिन स्थिति अभी भी वहां पे तनावपूर्ण बनी हुई है।
जी समीरात्मज मिश्र, बहुत शुक्रिया। बता रहे थे कि कासगंज में कल जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, अभी वहां पर हालात किस तरह के हैं, बता रहे हैं कि हालात अभी भी तनावपूर्ण है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य असम की, जहां के डिमा हासाऊ जिले में हिंसक झड़प के बाद गुरुवार की शाम से ही बेमियादी कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई इस झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई जख्मी हुए हैं। विरोध कर रहे संगठनों की मांग है कि सरकार उन्हें लिखित में ये आश्वासन दे कि उनकी जमीन किसी भी कीमत पर नागालैंड को नहीं दी जाएगी। क्या है ये मामला, जानने के लिए सुनिए गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
असम के डिमा हासाऊ जिले के कई स्थानीय संगठन लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर भारत सरकार नागा चरमपंथी संगठन NSCN-IM के साथ समझौता करती है तो उनके इलाके की काफी जमीन असम से कटकर नागालैंड में चली जाएगी। इसी का विरोध करते हुए डिमासा समुदाय के शीर्ष संगठन जादी के नाइसो होसोम ने अपने कुछ सहयोगी संगठनों के साथ गुरुवार को इलाके में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान जिले के मायबांग इलाके में प्रदर्शनकारियों ने रेल को रोकने की कोशिश की तथा कई जगह रेल पटरियों को उखाड़ दिया। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई के तहत फायरिंग की, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। असम पुलिस के महानिदेशक मुकेश सहाय ने बीबीसी से कहा,
माइबा में कर्फ्यू है, वहाँ कुछ लोगों ने रेल रोका और डीसीएसपी को अटैक किया, तो वहाँ फायरिंग वायरिंग हुई, वो क्राउड ज्यादा वायलेंट हो गई थी, इसलिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। कर्फ्यू अभी जारी है क्योंकि लोग अभी थोड़ा सा अभी भी वो रेल वेल को रोक रखे, वहाँ लोगों को जाने नहीं दे रहे पैसेंजर वगैरह को।
पुलिस की कार्रवाई से नाराज संगठनों ने 26 जनवरी से जिले में फिर से 48 घंटे का बंद बुलाया है। जादी के नाइसो होसम के अध्यक्ष कायलेन दावलागुप्पू कहते हैं,
हमने सुनने मिला जो सेंट्रल काउंसिल अगर हो रहा है तो ये नागालैंड से कंट्रोल करेगा, अभी आसाम में कोई से कंट्रोल नहीं करेगा, इसमें बहुत प्रॉब्लम है, ये इनडायरेक्टली ये जमीनी जा रहा है, वही हम लोग का दौरा है।
दरअसल जगदम्बा माल नामक एक व्यक्ति ने हाल ही में मीडिया के समक्ष ग्रेटर नागालैंड में डीमा हसाओ के कुछ हिस्से को शामिल करने से जुड़े एक मसौदे का जिक्र किया था और उसके बाद यहां के स्थानीय लोग भड़क गए। कुछ मीडिया रिपोर्टों में इस व्यक्ति को आरएसएस नेता बताया गया था। इसके जवाब में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गुप्ता कहते हैं,
पहली बात तो यह है कि जगदम्बा मल जो है वो आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं है। जहां तक डीमा हसाओ में जो हिंसा भड़की है वह जगदम्बा मल के बयान के ऊपर भड़की है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत यह है कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और ये चीजें अभी तक सामने आई नहीं है।
डीमा हसाओ जिले में उत्पन्न स्थिति को सामान्य करने के लिए राज्य सरकार ने एक लिखित बयान जारी कर तथाकथित ग्रेटर नागालैंड में असम की एक इंच जमीन भी नहीं दिए जाने की बात कही है। डीमा हसाओ जिले में ऐसी कई गंभीर समस्याओं के चलते लंबे समय तक विद्रोही संगठन सक्रिय रहे हैं। अब ग्रेटर नागालैंड के मुद्दे ने यहां के मूल लोगों की भावनाओं को फिर से छेड़ दिया है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
हरियाणा के पंचकुला के साकेतरी गांव में मोहम्मद रमजान नाम के एक बुजुर्ग को पुलिस द्वारा कथित तौर पर पीटने का मामला सामने आया है। पेशी से ड्राइवर मोहम्मद रमजान का आरोप है कि पुलिस ने उनके कपड़े उतारकर उन्हें पीटा और पाकिस्तानी कहा। सुनिए क्या कहना है उनका।
मोहम्मद रमजान नाम मेरा जी, उम्र मेरी 54 साल है, ड्राइवरी करता जी। एतवार रात की बात है जी, सोमवार साड़ी छुट्टी थी, तैयारी गड्डी लेके घर नारे मालिक कहते अपने घर ले जाओ गड्डी, लाइसेंस दिखा, मैं लाइसेंस दिखा दिया। मेरे को कहता तू मुसलमान बहुत खराब आदमी है, पाकिस्तानी है, कट्टर मुसलमान, ये कपड़े में उतार रहा। मेरे को मारा जी, उसने आके मेरे पुरपड़ी में मारा और इसने भी मारा, साथ में मैं गिर गया।
क्या है ये मामला? पूरा घटनाक्रम समझने के लिए, पूरी जानकारी के लिए बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद ने हमारे सहयोगी अरविंद छाबड़ा से संपर्क किया।
जी देखिए, 64 वर्षीय मोहम्मद रमजान जो है ये एक दुकानदार के यहाँ पर ड्राइवर हैं, चंडीगढ़ से सटे पंचकूला में। रविवार की रात वो वापस घर आ रहे थे अपने एक हेल्पर के साथ, उनको पुलिस की जो पीसीआर की गाड़ी होती है उसने चेज करना शुरू कर दिया, उसका पीछा करना शुरू कर दिया उनकी गाड़ी का, और कुछ दूरी पर जाने के बाद उन्हें रोका, उनसे कागजों की डिमांड की, गाड़ी की कागजों की मांग की, उन्होंने उनको कागज दिए, तो उसके बाद उन्होंने जो मोहम्मद रमजान ने हमें बताया, उन्होंने कहा कि उनसे कागज तो पूरे हैं लेकिन चलान करना पड़ेगा आपका। तो उसके बाद उन्हें जो है अपने पुलिस स्टेशन में ले गए जो पास ही था, और वहां पर जाकर इनको पीटना शुरू कर दिया। तो उसके बाद इन्हें कहा कि अपने कपड़े उतारिए, और जब इन्होंने इस पर एतराज जताया मोहम्मद रमजान ने, तो उसको उन्होंने कहा कि बहुत ही गंदे व्यक्ति हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, इस तरह की बातें की और उनको पीटना शुरू कर दिया और कपड़े वगैरह उनके उतार दिए, और काफी बुरी तरीके से जो है उनको खून वगैरह भी निकलने लगा, कमीज जो उनकी थी वो पूरी खून से भर गई, इतना बुरी तरह पीटा गया। उसके बाद उनके जो उनके आरोपों के अनुसार उनके पैसे वैसे सब ले लिए और छोड़ दिया वहां पर।
क्या इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है या कुछ पुलिस ने कहा?
जो इनके मालिक थे वो उनको पास ही के अस्पताल में ले गए, अस्पताल से वहां पर एक अस्पताल में रेफर किया गया क्योंकि चोटें जो थी उनके अनुसार काफी गंभीर थी, और उसके बाद कंप्लेंट की गई, मीडिया में भी खबरें आई, और उसके बाद जो पुलिस है, पुलिस कमिश्नर जो एएस चावला है पंचकूला के, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि दो जो पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि सीधे सीधे उनका कहना है कि बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि एक इंक्वायरी जो है, जांच भी शुरू कर दी गई है।
हाल ही में शिवसेना ने घोषणा की थी कि वो 2019 का लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। अब एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अकेले चुनाव लड़ने से शिवसेना बुरी तरह से हारेगी। क्या वजह है कि समान विचारधारा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं? बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर से यही सवाल किया।
पहली चीज ये है कि जो आइडियोलॉजी के वजह साथ रहते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि वो पॉलिटिकली भी साथ है। सीपीआई और सीपीएम दोनों पॉलिटिकली एक में के खिलाफ है लेकिन आइडियोलॉजिकली साथ है। शिवसेना और बीजेपी का नाता सिर्फ हिंदुत्व से नहीं है, पॉलिटिक्स का भी है और पॉलिटिक्स में इट इज पॉलिटिक्स ऑफ पावर। तो शिवसेना को लगता है कि उनको पावर में होते हुए भी कोई सत्ता स्थान नहीं मिल रहा है और शिवसेना को हमेशा ह्यूमिलेट किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है और वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से होता है। उनको जो डिपार्टमेंट्स दिए गए मिनिस्ट्री में वो डिपार्टमेंट्स भी कम दर्जा के थे और वो भी उसके फाइनल डिसीजंस मुख्यमंत्री के हाथ में थे।
एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कही है लेकिन उनका कहना यह है कि इसमें शिवसेना को ही नुकसान होगा और वो बुरी तरीके से हारेंगी।
बुरी तरह से दोनों भी हार सकते हैं क्योंकि शिवसेना के जो ग्राउंड रूट्स है वो सिर्फ चार शहरों में है, मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, और बीजेपी के ग्राउंड रूट्स कोई भी रूरल एरिया में नहीं है, शिवसेना के भी नहीं है, वहाँ कांग्रेस के और एनसीपी के हैं। तो इन दोनों के स्प्लिट का फायदा होगा तो ही तो कांग्रेस या एनसीपी को थोड़ा बहुत होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो खुश रहेंगे ये स्प्लिट के बाद।
बीजेपी की कॉन्फिडेंस की वजह क्या है?
बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस दिखाती है उतना कॉन्फिडेंस उनको नहीं है और गुजरात के चुनाव के बाद तो बिल्कुल ही नहीं है। गुजरात के चुनाव में साफ साफ नजर आया है कि बीजेपी जितना दिखाती है उतनी उनकी ताकत लोगों में अभी रही नहीं है और मोदी का करिश्मा भी रहा नहीं है। तो बीजेपी जरूर मार खाने वाली है और शिवसेना के साथ होते हुए जो उनको एडवांटेज मिल रहा था वो भी नहीं मिलने वाला है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर।
बीबीसी इंडिया बोल। क्या जातीय संगठनों की हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने में भेदभाव बरत रही है सरकार? दलितों की भीम आर्मी के नेता राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में हैं, लेकिन भड़काऊ बयान देकर हिंसा भड़काने के बावजूद राजपूत करनी सेना महफूज क्यों? इस बार इंडिया बोल पर इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 27 जनवरी शाम 7:30 बजे से मुफ्त फोन करें 1800 11 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी, कल गणतंत्र दिवस था, राजपथ पर परेड निकली और उस परेड में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी सीमा भवानी। भारतीय जो सीमा सुरक्षा बल है उसका महिला दल, इन्होंने कर्तव्य दिखाए और आज के तमाम अखबारों में इनकी तस्वीरें छपी हैं महिलाओं की कर्तव्य दिखाते हुए, बाइक पर ये हैं। और अखबारों ने ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति कोविंद इनको देखकर काफी खुश हुए। इसके अलावा इसी से समारोह से जुड़ी एक और खबर ध्यान खींच रही है। कल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा रही, राहुल गांधी को छठी पंक्ति में जगह दी गई, भीड़ के बीच मुंह दिखाते राहुल गांधी की तस्वीर कल सोशल मीडिया पर घूमने के बाद आज अखबारों में भी है। एक और खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, 18 साल की एक पुणे की रहने वाली लड़की को कश्मीर में मानव बम होने के शक में हिरासत में लिया गया है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज। भाषण सुने जाने के लिए दिए जाते हैं, लोगों पर असर छोड़ने के लिए वो शब्दों के ही मोहताज नहीं होते, आपको शब्दों को बोलने का ढंग भी आना चाहिए। विवेकानंद से लेकर जवाहरलाल नेहरू, हीरेन मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जैसे कितने ही राजनेता हुए हैं जिन्होंने अपनी वाक शक्ति या भाषण कला से लोगों का दिल जीता है। आज की विवेचना में रेहान फजल डाल रहे हैं उन भाषणों पर नजर जिन्होंने भारतवासियों पर सबसे ज्यादा असर डाला है।
Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world.
ये भाषण है महान चिंतक स्वामी विवेकानंद का, जो उन्होंने विश्व धर्म संसद शिकागो में 11 सितंबर 1893 को दिया था। कहा जाता है कि जैसे ही विवेकानंद ने बोलना शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, वहां मौजूद लोग खड़े हो गए और उनके सम्मान में पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, विवेकानंद ने दुखी और हतोत्साहित हिंदुओं के दिमाग के लिए एक टॉनिक का काम किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके भूत की जड़ें मजबूत हैं जिन पर वो गर्व कर सकते हैं। आखिर एक प्रभावशाली भाषण की पहचान या परिभाषा क्या है? भारतीय लोगों द्वारा दिए गए चर्चित भाषणों पर द पेंगुइन बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन स्पीचेस लिखने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राकेश बाताबयाल बताते हैं।
सबसे बढ़िया वक्ता या स्पीच वही होगा जो ऑडियंस को बांध रखे अपने साथ और साथ में ऑडियंस को कुछ ऐसा दे दे कि ऑडियंस अगले आधे घंटे कम से कम उस पर सोचे। बांधने के लिए एक शैली चाहिए होगी, स्टाइल चाहिए होगी, शब्द चाहिए होंगे, वोकैबुलरी होनी चाहिए।
4 जुलाई 1944 को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरे देश से आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो पूरा भारत जैसे जागृत हो गया था।
नेहरू एक लेवल पे इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं हम लोगों के लिए, उत्साह भी उनमें भी है। सुभाष जो है इन्फेक्शियस है, कुछ भी करें हम उनके साथ है वो बात है। नेहरू के साथ जाने के लिए हम सोचते हैं अरे ये तो इतनी बड़े, हम कैसे उनके पास कैसे जा पाएंगे, सुभाष के साथ हम जाने को तैयार है। जब सिंगापुर वगैरह से जो वो आजाद हिंद फौज की जो उनकी जो एक जो सबसे बढ़िया तकरीर जो है जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी द फादर ऑफ द नेशन गिव अस द ब्लेसिंग्स, वो सुभाष की महत्ता के साथ साथ नेशनल मूवमेंट की महत्ता को भी, इतनी लड़ाई के बाद वो गांधी, उनका एक ग्रह तो रहा ही कि गांधी ने निकाला उनको, लड़ाई हुई लेकिन उसके बाद भी कह रहे फादर ऑफ द नेशन आप हैं। वो बंगाली थे, बंगला उनकी भाषा है, हिंदी सीखी नहीं, लंदन चले गए, वहां से लौटे, इसलिए उनकी हिंदी में वो हिंदुस्तानी पुट नहीं था लेकिन उन्होंने उसमें कोशिश की लाने की, तो उसके उनकी भाषा में एक दूसरा जो एक नॉर्मल हिंदुस्तानी जो गंगा जमुना इलाके का नहीं है साउथ इंडियन है, वो कैन एसोसिएट देमसेल्व्स विद हिज हिंदी और हिंदुस्तानी स्पीच।
हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे।
14 अगस्त 1947 की आधी रात भारत की आजादी पर जवाहरलाल नेहरू के दिए भाषण को कौन भूल सकता है? नेहरू के सचिव रहे एमओ मथाई अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं।
नेहरू कई दिनों से अपने भाषण की तैयारी कर रहे थे। जब उनके पीए ने वो भाषण टाइप कर मुझे दिया तो मैंने देखा कि एक जगह नेहरू ने डेट विद डेस्टिनी मुहावरे का इस्तेमाल किया था। मैंने रॉजेट का शब्दकोश देखने के बाद नेहरू से कहा कि डेट शब्द इस मौके के लिए सही शब्द नहीं है क्योंकि अमरीका में इसका आशय महिलाओं या लड़कियों को घूमने ले जाने के लिए किया जाता है। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वो डेट की जगह रॉन्डेवू या ट्रिस्ट शब्द का इस्तेमाल करें। मैंने उन्हें यह भी बताया कि रूजवेल्ट ने युद्ध के दौरान दिए गए भाषण में रॉन्डेवू शब्द का प्रयोग किया है। नेहरू ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर अपने हाथ से डेट शब्द काटकर ट्रिस्ट लिखा। नेहरू के भाषण का वो आलेख आज भी नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में सुरक्षित है।
And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially.
उसी शाम को आजादी मिली है, पार्टीशन भी हुआ है, उनको पता है, उन पे पत्थर बरसे गए हैं नॉर्थ वेस्ट में, लेकिन स्पीच में है कि एक सपना है, उसमें कहीं रैंकर नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, तो ये जो अनडाइल्यूटेड ड्रीम है ना वो बहुत बड़े, वो मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा अच्छा स्पीच होगा जहां एक सभ्यता अपने सबसे बड़े आकार में आ रही है कि मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई देश नहीं है और उस ड्रीम में हर आदमी शामिल है।
इसके 5.5 महीने बाद नेहरू को बहुत अप्रिय परिस्थितियों में देश को संबोधित करना पड़ा जब नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। नेहरू ने यह भाषण बिना किसी तैयारी के एक्सटेम्पोर दिया था। बाद में उनके सचिव एमओ मथाई ने लिखा,
गांधी के पार्थिव शरीर को देखकर नेहरू कांपने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ ही रहूं। जब वो कार में बैठे तो मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखकर मुझे रोक दिया। वो गहन चिंतन में थे। मैं उनके साथ ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो के अंदर तक गया। जैसे ही हरी बत्ती जली नेहरू के मुंह से शब्द निकले, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स।
फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर एंड आई डू नॉट क्वाइट नो व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more.
वैसे तो भारतीय संसद में नाथपाई, फिरोज गांधी, पीलू मोदी और इंद्रजीत गुप्त जैसे कई वक्ता हुए हैं, लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेजी में हीरेन मुखर्जी से अच्छे भाषण किसी ने नहीं दिए। लेकिन जहां तक हिंदी में भाषणों की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी का कोई सानी नहीं। वाक्पटुता, शब्दों का चुनाव, सबसे बढ़कर उनकी डिलीवरी, लंबे लंबे पॉजेस और आंख मूंद कर उंगलियों को घुमाने की उनकी अदा, मानो वो गेंद को स्पिन कर रहे हों, लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी थी।
मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप ये है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद करूंगा।
लेकिन वाजपेयी का सर्वश्रेष्ठ भाषण था जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के निधन पर दिया था। उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है क्योंकि उस जमाने में संसद की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, लेकिन वो मार्मिक भाषण अपने आप में एक अनूठा भाषण था।
एक सपना अधूरा रह गया, एक गीत मौन हो गया और एक लौ बुझ गई। ये एक परिवार, पार्टी और समाज का नुकसान भर नहीं है, भारत माता शोक में है क्योंकि उसका सबसे प्रिय राजकुमार सो गया। मानवता शोक में है क्योंकि उसे पूजने वाला चला गया। दुनिया के मंच का मुख्य कलाकार अपना आखिरी एक्ट पूरा करके चला गया, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सूर्यास्त हो गया है, लेकिन तारों की छाया में हम रास्ता ढूंढ लेंगे। ये इम्तिहान की घड़ी है, लेकिन उनको असली श्रद्धांजलि भारत को मजबूत बनाकर ही दी जा सकती है।
लालू प्रसाद यादव के आज के दिन भले ही अच्छे न चल रहे हों, लेकिन उनके धुर विरोधी भी उनका भाषण सुनने का लोभ संवरण नहीं कर सकते।
मूर्ख नहीं है, हम लोग हैं पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। केजरीवाल है कोई बताइए, केजरीवाल ये हम लोग का मार्गदर्शक बना हुआ है, ये हम लोग को टीच कर रहा है, ये हमको पढ़ा रहा है, ये अन्ना जी को ये बिल्कुल लोग मिसलीड कर रहा है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक अंबिकानंद सहाय कहते हैं,
लालू यादव भी लाजवाब है। वो अपने टारगेट ऑडियंस को रूरल रस्टिक अंदाज में जिस तरह रॉ नर्व्स को वो टच करते हैं, वो बेजोड़ है। वो दूसरा लालू यादव हो नहीं सकता है। ये लालू यादव की खासियत है कि बड़े खूबसूरती से उसने अपने को बिहार का सिनोनिमस बना दिया। आप किसी से हिंदुस्तान में पूछ लें, जब बिहार की छवि आती है कौन नाम सामने आता है, हर आदमी कहेगा लालू यादव।
वर्तमान राजनीति में नरेंद्र मोदी से अच्छा भाषण देने वाले कम लोग हैं। उनके कंटेंट में बौद्धिकता का पुट भले ही ना हो, लेकिन आम लोगों से उनका कनेक्ट जबरदस्त है।
उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है। मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे, ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो।
देश के बुद्धिजीवी लाख कहते रहे कि वो सपने बेचते हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्किल्स इतना जबरदस्त है कि बावजूद इसके कि वो सपने बेच रहे हैं, जनता उन पर यकीन करती है। ये बहुत जबरदस्त बात है कि मैं जान रहा हूँ कि ये चुनावी भाषण उनका है और बहुत से वायदे कर रहे हैं, खुदा जाने कितना वो सफल होगा नहीं होगा, फिर भी उनके शैली में ये अंदाज है कि जनता कन्विंस हो जाती है और इसीलिए आज भी उनकी पर्सनल व्यक्तिगत क्रेडिबिलिटी की रेटिंग हाई है। उनको और भारतीय जनता पार्टी के क्रेडिबिलिटी को यदि आप देखेंगे तो आपको ये दो एंटिटी नजर आएंगे कि मोदी जी कुछ और है, भारतीय जनता पार्टी कुछ और शायद भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे लड़े तो सब जगह हार भी जाए।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। और अब खेल समाचारों में बात करेंगे क्रिकेट की। वॉन्डरर्स टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने भारत के दिए 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 ओवर और 3 गेंदों में 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन बना लिए हैं। बता दें कि दिन का खेल खत्म होने से कुछ ही देर पहले जसप्रीत बुमराह की एक गेंद डीन एल्गर के हेलमेट पर जा लगी। इसके बाद मैच को रोक दिया गया। रेफरी ने दोनों टीमों के कप्तानों और अंपायरों के साथ खराब पिच को लेकर मीटिंग भी की। ऐसे में आज चौथे दिन क्या होता है इस पर सबकी नजरें होंगी। तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया मीना कोटवाल ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।